नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत जमा पर 8.15% ब्याज दर की पुष्टि की है। ईपीएफओ ने 28 मार्च 2023 को 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.15% की दर से ब्याज देने का फैसला किया था। इस तरह ईपीएफओ ने अपने 6 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए ब्याज में मामूली बढ़ोतरी की, जो इससे पहले 8.10% थी। सोमवार को जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को 2022-23 के लिए ईपीएफ पर 8.15% की दर से ब्याज सदस्यों के खातों में जमा करने के लिए कहा है। मुंबई में 10 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले घरों की बिक्री चालू साल के पहले 6 माह जनवरी जून के दौरान 49% बढ़ी है। यह आंकड़ा मूल्य के लिहाज से 11,400 करोड़ रुपए रहा। इंडिया साउथ बिज इंटरनेशनल रियलिटी और सीआरई मैट्रिक्स की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार एक साल पहले इसी अवधि में 10 करोड़ रुपए से महंगे मकानों की कुल बिक्री 7,660 करोड़ रुपए थी। रिपोर्ट में कहा गया कि मुंबई में लग्जरी अपार्टमेंट की मांग मुख्य रूप से उद्योगपतियों, बॉलीवुड हस्तियों और उच्च वेतन भोगी कर्मचारियों की से आई। इंडिया साउथ बिज इंटरनेशनल रियलिटी के प्रबंध निदेशक अमित गोयल ने कहा कि पहली 6 माही में लग्जरी मकानों की बिक्री में आया उछाल उद्योग की दृष्टि से सकारात्मक है। उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि भारत की आर्थिक दास्तान एक अधिक चमकदार तस्वीर पेश करता है और ढांचागत क्षेत्र को सरकार के प्रोत्साहन और व्यावहारिक नीतियों से निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय बढ़ा है। आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन बिरला ने अल्ट्राटेक सीमेंट की वार्षिक रिपोर्ट में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए विशाल रंगमंच पर भारत सिर्फ एक दर्शक के रूप में खड़ा न होकर एक करिश्माई नेतृत्व प्रदान कर रहा है। बिरला ने कहा, ढांचागत क्षेत्र में निवेश को सरकार के प्रोत्साहन और उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जैसे व्यावहारिक नीतियों से निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय बढ़ा है। सरकारी स्वामित्व वाले कैनरा बैंक ने सोमवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 75% बढ़कर 3,535 करोड़ रुपए हो गया। बैंक ने बताया कि फंसे हुए कर्ज में गिरावट और ब्याज आय में वृद्धि से उसे मदद मिली। बेंगलुरु स्थित ऋणदाता ने एक साल पहले की अवधि में 2,022 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। कैनरा बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि 2023-24 की पहली तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 29,828 करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 23,352 करोड़ रुपए थी। समीक्षाधीन अवधि में बैंक की ब्याज आय सालाना आधार पर 18,177 करोड़ रुपए से बढ़कर 25,004 करोड़ रुपए हो गई। चालू खरीफ सत्र में 21 जुलाई तक धान की बुआई का क्षेत्रफल 3% बढ़कर 180.2 लाख हेक्टेयर हो गया, जबकि दलहन का रकबा 10% घटकर 85.85 लाख हेक्टेयर रह गया। कृषि मंत्रालय के सोमवार को जारी आंकड़ों ने ये जानकारी मिली। पिछले साल इसी अवधि में धान का रकबा 175.47 लाख हेक्टेयर और दलहन का रकबा 95.22 लाख हेक्टेयर था। धान खरीफ की मुख्य फसल है, जिसकी बुआई आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ शुरू होती है। देश के कुल चावल उत्पादन का लगभग 80% खरीफ सत्र से आता है। आंकड़ों के अनुसार श्री अन्न या मोटे अनाज का रकबा 21 जुलाई तक बढ़कर 134.91 लाख हेक्टेयर हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 128.75 लाख हेक्टेयर था। गैर खाद्यान्न श्रेणी में तिलहन का रकबा बढ़कर 160.41 लाख हेक्टेयर हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 155.2 लाख हेक्टेयर था। GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि उसकी सहायक कंपनी GMR स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 7,593 करोड़ रुपए का ठेका मिला। इस स्मार्ट मीटर परियोजना को भारत सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के तहत सुरक्षित किया गया। कंपनी ने बताया, सहायक कंपनी GMR स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को 7,593 करोड़ रुपए का प्रतिष्ठित ठेका मिला। DBFOOT मॉडल के तहत मिले ठेके में 2 बिजली वितरण कंपनियों दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 75.69 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। इस परियोजना के दायरे में राज्य के 22 जिले शामिल हैं, जिनमें वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ प्रमुख हैं। GMR समूह के चेयरमैन श्रीनिवास बोमिनडाला ने कहा, ये उपलब्धि ग्राहक केंद्रित वृद्धि रणनीति के साथ हरित और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा व्यवसाय में आगे बढ़ने की GMR की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। सरकार ने चीन की इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता BYD और उसकी भारतीय भागीदार मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के $1 अरब के निवेश से EV संयंत्र लगाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी। MEIL BYD के एक संयुक्त उद्यम ने सरकार को तेलंगाना में इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन संयंत्र लगाने का प्रस्ताव दिया था। इस पर $1 अरब का निवेश किया जाना था। सूत्रों ने बताया कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव को जरूरी पड़ताल और मंजूरियों के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के पास भी भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक सरकार के स्तर पर इस प्रस्ताव के तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद इसे मंजूरी नहीं देने का फैसला किया गया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।